भजन संहिता 68, भजन 68 पद 1 और 2। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो, और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो। ये विचार परमेश्वर के विरोधियों के विषय में है, तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो। भजन 68 पद 3। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित और मगन हो। भजन 68 पद 4। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। याह मैं हूं, और नामों में नाम, यहोशू यहोशोपात। इस प्रकार या मूल शब्द से बनने वाले अनेक नाम हैं, परंतु हमारे लिए यहोशुआ नाम विशेष है, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है येशु। उसका नाम या है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। भजन 68 पद 5 से लेकर 16 तक। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हटीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनाय पर्वत परमेश्वर, हां इसराइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुत से वरदान बरसाए, तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है, तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा आगे चले जाते हैं और गृहस्थिन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शालाओं के बीच लेट जाओगे और ऐसे कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदनी से और जिसके पल पीले सोने से मढ़े हुए हो? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहां यहोवा सदा वास किए रहेगा? दूसरे शब्दों में मानो कि वो दूसरे पर्वतों को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने सियोन पर्वत को अपने निवास स्थान के लिए चुना है। हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो? ऐसा तो हमें करना है क्योंकि हम सबसे ऊंचे हैं। भजन 68 पद 17 और 18। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है, जैसे वो सीनाय पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हटीले मनुष्यों से भी भेंटे ली, जिसे या परमेश्वर उनमें वास करे। अब यहां पर यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी दी गई है, जिसका उल्लेख पौलुस भी एफिसियों के नाम पत्री के अध्याय 4 में किया है। वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांधकर ले गया और मनुष्यों को दान दिया, और वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करें, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यत वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पौलुस ने लिखा, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांधकर ले गया, परंतु बंधुआई को बांध ले जाने के लिए सबसे पहले वो पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा, ताकि बंधुआई को बांध ले जाए। यीशु मसीह की मृत्यु से पहले पुराना नियम के भक्त जन स्वर्ग की महिमा में प्रवेश नहीं कर पाए थे। ये आवश्यक था कि उनके पाप हटा दिए जाएं, जो पुराने नियम के बलिदानों को पूरा नहीं कर पाए थे। बैल और बकरी के लहू से उनके पाप मिट जाए, ये अनहोना था। पुराने नियम के बलिदान एक ऐसा बलिदान की ओर इशारा करते थे जिसको परमेश्वर करने वाला था, जो उसने अपना इकलौता बेटा बेचकर किया कि उस मेमने का बलिदान हमारे पापों का बलिदान बने। पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19 पद। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इसलिए बैल और बकरी का लहू पापों को न धो सका था, परंतु केवल एक संपूर्ण बलिदान की ओर इशारा करता था जो आने वाला था। उनके पाप ढके हुए थे, और जब वो मरे वे मृत्यु के द्वारा अधोलोक में शियोल या हेडिस में ठहरे रहे। शियोल या अधोलोक यीशु की मृत्यु से पहले दो भागों में विभाजित था। एक भाग अविश्वासियों के दुख उठाने के लिए और दूसरा भाग उन लोगों के लिए था जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की आशा करते थे। वे इब्राहिम के द्वारा सतावना पाते थे। पुराने नियम के भक्त सब विश्वास में मरे, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ना पा सके, परंतु दूर ही से देखकर मान लिया कि वे इस संसार में परदेशी और यात्री हैं। वे एक ऐसे देश की तलाश में थे जिसकी नेव डालने वाला और बनाने वाला परमेश्वर ही है। जब यीशु मरा वो अधोलोक में उतर गया, और जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया और बंधुआई को बांध ले गया। यशया की पुस्तक अध्याय 61 में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कहती है, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, जो बंधे हुए हैं उनको छुटकारा दूं और कैदियों के लिए दरवाजे खोलूं। ये वे थे जो मृत्यु से बंधे हुए थे और अब्राहम के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने की बाट जो रहे थे। जब यीशु मरा वो अधोलोक में उतर गया और उन्हें परमेश्वर की महिमाविंत प्रतिज्ञा के पूरे होने का सुसमाचार सुनाया कि उद्धार का कार्य पूरा हुआ। लहू बहा दिया गया और उनके पाप सदा के लिए मिटा दिए गए हैं। क्योंकि उनके पाप मिट गए थे, वे स्वर्गीय धाम में प्रवेश कर सकते थे। इसलिए जब वो ऊपर चढ़ा, तब अपने साथ बंधुआई को बांधकर ले गया और मनुष्यों को वरदान दिया। उसने कलीसिया में मनुष्यों को प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक और उपदेशक नियुक्त करने के दान दिए। यही बात पौलुस एफिसियों अध्याय 4 में लिखता है। लूका का 16 अध्याय, प्रेरितों के काम का 2 अध्याय, एफिसियों 4 अध्याय और यही संदर्भ पत्रस की पुस्तक में है कि वो नीचे गया कि कैदी आत्माओं को प्रचार करें। भजन 68 पद 19, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मुझे ये पद अच्छा लगता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन मेरा बोझ को उठाता है, क्योंकि मैं उसका सेवक हूं और उसके साथ चलता हूं। ओह, यीशु मसीह में मुझे अनेकों लाभ मिले हैं। भजन 68 पद 19 और 20, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। वास्तव में हमारा जीवन काल परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है और मृत्यु प्रभु परमेश्वर के हाथ में है। भजन 68 पद 21 से लेकर 25 तक, निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसके बाल भरे छोंडे पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा, मैं उनके गहरे सागर के ताल से भी फेर ले आऊंगा, कि तू अपने पांव को लहू में डुबाए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति दिखाई गई, मेरे ईश्वर मेरे राजा की गति पवित्र स्थान से दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए, चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थी। यहां पर वो परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना का वर्णन कर रहा है। वो बताता है कि जलूस में आने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों को बजाने वाले पीछे पीछे गए और कुमारियां डफ बजाती थी। भजन 68 पद 26, सभाओं में परमेश्वर का, हे इसराइल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। आज हमारी आराधनाएं एक दिखावा ही रह गई है। हम बेंच पर बैठते हैं, लाइन में बैठते और अनुशासित रहते हैं और परमेश्वर के वचन से संदेश सुनते हैं, परंतु मुझे निश्चय है कि हमारी आराधना स्तुति में बहुत कुछ बदलाव लाने की गुंजाइश है। जब इसराइली समतल भाग के भीतर प्रवेश करते थे तब वे गीत गाते थे, गाने वाले आगे आगे परमेश्वर की बड़ाई करते हुए प्रवेश करते, उसके बाद बाजा बजाने वाले, उसके बाद डफ बजाने वाले होते थे। यदि आप यरूशलेम की यात्रा करना चाहते हैं तो शुक्रवार की शाम को सबत से पहले जाएं। शुक्रवार की शाम को हम हमेशा दक्षिणी दीवार के पास बिताना चाहते हैं, क्योंकि वहां लोग जमा होने लगते हैं जब यहूदी जवान बच्चे स्कूल से वहां आते हैं। चार चार की कतार में लंबी लाइन लगाकर वे एक दूसरे पर हाथ रखे स्तुति गान गाते हुए वहां आते हैं। वास्तव में यही इस शाम की खुशियां हैं। ये बच्चे प्रभु की आराधना करने दक्षिणी दीवार के पास आते हैं। वे अपने ही प्रकार का विशेष नाच करते हुए आते हैं और जैसे ही वे दीवार के पास आते हैं, वे स्तुति गान गाते, घेरा बनाते, गोला बनाकर नाचते हैं और करीब आधा घंटा स्तुति और आराधना करके वे अपनी बाहें चारों ओर रखते गाते बजाते वापस पहाड़ी पर चले जाते। मैं समझता हूं हमारे पास परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए प्रदर्शन करने का अधिक स्थान होना चाहिए। आप परमेश्वर के भवन में आराधना करने आ रहे हैं, ये तो उत्साहित करने वाला समय होना चाहिए। भजन संहिता 100 पद 4, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। लोग जमा होते, अपनी कार का हॉर्न बजाते हुए संकेत देते, मेरे रास्ते से हट जाओ, आराधना में जा रहा हूं। जब हम आराधनालय पहुंचते हैं तब हमें वास्तव में ऐसा उत्साह की आवश्यकता होती है, आनंद से भरा पूरा मन, परमेश्वर की स्तुति से छलकता हुआ मन जिसमें उसकी आराधना की उमंग हो, स्तुति से विभोर हृदय उसकी आराधना की आशा में। अब भजनकार आराधना में इकट्ठे हुए लोगों को देखता है। भजन 68 पद 27 से लेकर 29 तक, वहां उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामिन है, वहां यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है, वहां जबुलून और नप्ताली के भी हाकिम हैं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले, हे परमेश्वर जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। ये फिर प्रभु के राज्यकाल के बारे में है, जब पृथ्वी के राजा आकर यीशु को अपनी अपनी भेंट चढ़ाएंगे। भजन 68 पद 30 से लेकर 35 तक, नरकटों में रहने वाले बनेले तो पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे, वे चांदी के टुकड़े लिए वे प्रमाण करेंगे, जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से रईस आएंगे, कूशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो वो अपनी वाणी सुनाता है, वो गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर की सामर्थ की स्तुति करो, उसका प्रताप इसराइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है, इसराइल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है, परमेश्वर धन्य है। ये पृथ्वी पर स्थापित होने वाले प्रभु के राज्य की आराधना की महिमा है। ये आराधना बहुत उत्साहित करने वाली होगी। गीत गाने वाले, वाद यंत्र, लड़कियां अपनी डफ के साथ और सारी कलीसिया खड़े होकर प्रभु की आराधना करेगी।